नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंसो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इससे पहले अंगोला पहुंचने पर लुआंडा स्थित राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य औपचारिक स्वागत किया गया और सलामी गारद दिया गया। दोनों नेताओं ने भारत और अंगोला के बीच बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर व्यापक चर्चा की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने उत्कृष्ट संसदीय प्रथाओं के आदान प्रदान, कृषि, विशेष रूप से बीजों और उर्वरकों, तेल अन्वेषण और शोधन, संचार और परिवहन अवसंरचना, दुर्लभ मृदा खनिजों और हीरा प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया। राष्ट्रपति ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लुआंडा आकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से अंगोला को उसकी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि दोनों देश अपने 40 वर्षों के संबंधों की वर्षगांठ मना रहे हैं। मत्स्य पालन, जलीय कृषि, समुद्री संसाधन और वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। हवाई सेवा समझौते को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। अंगोला ने इंटरनेशनल बी कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर देहरादून में आयोजित रजत जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 8000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और 28,000 से अधिक किसानों को सहायता राशि भी जारी की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं।
बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है, इसलिए आज राज्य में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है, गौरीकुंड केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज समाप्त हो गया। सभी दलों के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए ताकत झोंक दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के नेताओं ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां और रोड शो किए। इस चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1,302 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 136 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों का आह्वान किया है कि वो निर्भय होकर मेहनत और लगन के साथ काम करें। वे मैसूरू में एक निजी संस्थान के स्नातक विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। भगवद गीता और श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने छात्रों से अपने ज्ञान का विस्तार करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि वे समाज में विभाजन को समाप्त करने के लिए संवाद की पहल करेंगे। वे कल बेंगलुरु में संघ की 100 वर्ष की यात्रा नए क्षितिज विषय पर व्याख्यान श्रृंखला के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे समाज में विभाजन को पाटकर सामाजिक समरसता के लिए काम करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।